थी। रात की क्लास चल रहा था 28 जुलाई 1968। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, राम राज्य में होता है सुख और रावण राज्य में होता है दुख। राम अर्थात रमण कराने वाला और रावण अर्थात रुलाने वाला। दुख में रोते हैं और सुख में खेलते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर रावण राज्य में हम बंदर मिसल थे, उन बंदर मिसल को ही बाप मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य पर जीत पहनाते हैं। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। यूं कहो कि सारी दुनिया एक बेट है। समुद्र पर सारी दुनिया खड़ी है। और सारी दुनिया में रावण राज्य है तो मनुष्य बहुत हैं। राम राज्य होगा तो थोड़े मनुष्य होंगे। तो अच्छी रीति समझना है। सुखदाई थोड़े होते हैं और दुखदाई बहुत होते हैं। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम ब्राह्मण ही बनते हो। क्योंकि तुम ब्राह्मणों ने 84 का पूरा चक्कर लगाया है। तुम्हारे में 84 के चक्र का ज्ञान है। परंतु ये विष्णु के चक्र आदि के अलंकार तुमको नहीं दे सकते, क्योंकि कभी अलंकार धारण करते हो कभी छूट जाते हैं। स्थाई अलंकार तुम्हारे रहते नहीं, इसलिए विष्णु है फाइनल। तुम्हारा संपूर्ण फरिश्ता रूप, इसलिए उनको अलंकार दे दिए। बाकी अंतर क्या है, विष्णु में और तुम्हारे में क्या अंतर है? तुम्हारे में ज्ञान है, विष्णु में ये ज्ञान नहीं होगा। अलंकार तो होंगे परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों में ही है। विष्णु जैसे संपन्नता स्वरूप देवताओं में भी नहीं है। न देवताओं में ज्ञान है न शूद्रों में ज्ञान है। तुम तो शूद्र से ब्राह्मण बन गए हो। एकदम एड़ी से चोटी के ब्राह्मण बने हो। एड़ी होती है सबसे नीच और चोटी होती है सबसे ऊंच। इसलिए तुम ब्राह्मण कुल को देवताओं से भी ऊंच कहा गया है। और तुम ब्राह्मणों से भी ऊंचे है शिव बाबा। इसलिए ब्राह्मण चोटी में गांठ लगाते हैं तो शिव का चित्र बनाई देते हैं। जो निराकार लिंग की यादगार है तो ब्राह्मणों के ऊपर है शिव बाबा। गाते भी हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी ये पुरानी दुनिया, बाकी थोड़ा समय है तो अभी नई दुनिया में जाने के लिए इस याद की यात्रा पर गौर करो। साथ साथ दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे समझते हैं कि हम कल्प कल्प अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत ही स्वर्ग बनता है। क्योंकि नाम ही है भारत, भारतात रोशनी। ये ज्ञान सागर के ज्ञान की रोशनी है, रत माने लगा हुआ, जो सदैव जीवन भर ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है, वो भारत ही स्वर्ग बनता है। राज्य में जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। राम राज्य में तुम जो भी कर्म करते हो वो अकर्म हो जाते हैं। क्योंकि कर्म देह से देहभान से किए जाते हैं। देवताएं तो आत्म की स्थिति में रहते हैं, इसलिए उनके कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्मों का कोई लेप छेप नहीं बनता। तो ये बात भी बाप ही समझाते हैं कि राम राज्य में विकर्म क्यों नहीं बनते। विपरीत कर्म इसलिए नहीं बनते हैं कि पांच तत्वों का जो शरीर है वो आत्मा का स्व नहीं है, पर है प्रकृति और प्रकृति के पांच तत्व। अगर इनकी स्मृति में रहते हैं तो जैसे देवान में रहते हैं, देवान में रहने से विकर्म बन जाते हैं। प्रकृति को स्त्री कहा जाता है, पुरुष को आत्मा कहा जाता है। तो आत्म की स्थिति में रहना बाप सिखाते हैं। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, कि आत्म की स्थिति में रहो, आत्मा के बाप को याद करो, आत्माओं का बाप एक ही है जो कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने वाला है, बाकी तो सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ड्रामा के चक्र का नॉलेज नहीं रख सकती। आत्माओं में सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है। पूरे षष्ठी चक्र का ज्ञान नहीं हो सकता। तुम बच्चे जानते हो, बाप से हम सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, आत्मिक स्थिति से ही सुख और शांति मिलती है। अभी भी प्रैक्टिस करके देखो, जिन दिनों में आत्मिक स्थिति ज्यादा रहती है उन दिनों सुख और शांति का अनुभव होता है। तो तुम्हारी यात्रा है चढ़ती कला की, भक्ति में यात्राएं करते हैं उतरती कला की। आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है, भक्ति मार्ग में वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी, और यहां तो तुम्हारा वेस्टेज होता ही नहीं। तुम ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची, सिर्फ ब्रह्मा के बच्चे नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, माता पिता की प्रवृत्ति मार्ग की संतान हो। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म एक ही सनातन धर्म है, देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बाकी और जितने भी मानवीय धर्म हैं, वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, शिव बाबा के पुत्र हो। पहले कौन, पहले शिव बाबा या प्रजापिता? पहले शिव बाबा। यज्ञ के आदि में कौन प्रत्यक्ष हुआ, क्या कहेंगे? शिव बाबा प्रत्यक्ष हुआ। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। प्रजापिता का नाम तो मुरलियों में भी बाद में ऐड किया गया, और मुरलियों को अर्थात वेदवाणी को समझने वाले तुम बच्चे हो। जो समझू सयाने नहीं है, उन्होंने तो अभी भी प्रजापिता को नहीं पहचाना। बाप कोई नहीं जानते तो प्रवृत्ति मार्ग के कैसे हुए? इसलिए सब इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो एक ही बेहद का बाप है, जिसमें बेहद आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं, उस बेहद के बाप को नहीं पहचान पाते। तो कहेंगे तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, भक्ति मार्ग में परंपरा चलती है, बच्चों को वर्षा बाप से मिले न मिले पार कति दे देवे, परंतु डाडे का वर्षा तो मिलता ही मिलता है। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ यज्ञ में फाउंडेशन पड़ता है। यज्ञ के आज में जो बच्चे कारण या कारण यज्ञ छोड़ करके चले गए, अभी दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में आए हैं, उन्हें बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भले कोई स्थान न मिले, परंतु जो डाढ़े का वर्षा है, ज्ञान का वर्षा, वो हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण तो भिक्षा मांगते हैं, कौन से ब्राह्मण? भक्ति मार्ग वाले। तुम ब्राह्मणों को तो कहते हैं मांगने से मरना भला, तुम्हारे अंदर जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार हैं, राजघराने के संस्कार हैं, राजाई के संस्कार वाले देने वाले होते हैं, कोई के सामने हाथ पसारने वाले नहीं होते हैं। तो तुमको तो कहते हैं मांगने से मरना भला, फिर बताते हैं कि सहज मिले से दूध सम, मांग लिया सो पानी। नई दुनिया की स्थापना के कार्य में भी जिनसे सहज सहज सहयोग मिलता हो बिना मांगे, वो सहज सहज ले लेना चाहिए। अगर इशारे से भी मांगना पड़े तो वो ईश्वरीय सेवा में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में काम में नहीं आवेगा। जैसे पानी को बिलोने से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता, कोई सार नहीं निकलता, ऐसे ही इस ज्ञान यज्ञ में मांगी हुई चीज स्वाहा करने से नई दुनिया के मतलब की चीज नहीं रहेगी। फिर कहते हैं खींच लिया सो खून बराबर। अगर नई दुनिया की स्थापना के नाम पर कोई से खींच करके ले लिया, धोखा देके ले लिया, झूठ बोल करके ले लिया, चोरी डकैती करके ले लिया और ईश्वरीय सेवा में लगाया, तो बाप कहते हैं कि वो क्षीर सागर नहीं बनाएगा, दूध की दुनिया नहीं बनावेगा और ही खून खराबे की दुनिया बन जावेगी। अब अभिभाग्य का बनाना और बिगाड़ना अपने हाथ की बात है। खून खराबे की दुनिया है द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता है क्षीर सागर की दुनिया, जहां विष्णु का राज्य है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक मत होकर के कार्य करते हैं। बाप दादा की श्रीमत पर न चले, तो ये दूध नहीं पानी हो जाता है। 28 जुलाई 68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, तो पक्का समझो कि मांगने वाले पर दोष लग जाता है। दोषपूर्ण होने के कारण रिजल्ट नहीं निकलता। कोई कहते हैं कि हम दुनिया वालों से थोड़े ही मांगते हैं, हम तो अपने बाप से मांगते हैं। अरे बाप मांगने से देने वाला है या बिना मांगे ही देने वाला है? 63 जन्म बाप के सामने मांगते रहे, क्या कुछ मिला? ब्राह्मण प्लेन अनुसार जब देना होता है तो स्वतः ही देते हैं, ज्ञान धन भी स्वतः ही देते हैं। बेहद के बाप से बच्चों को मांगने की दरकार नहीं। मार्ग में दान करते थे, मेरे अर्थ कृष्णार्पणम, कृष्ण को भगवान समझते थे ना, तो अल्पकाल का एक जन्म के लिए सुख मिल जाता था। तो इनडायरेक्ट की बात है। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है। देहधारियों के थ्रू जो लेन देन होता है उसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं। भक्ति मार्ग में होता है इनडायरेक्ट, एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है। और जब मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूं तो 21 जन्म के लिए प्राप्ति कराता हूं। तो डायरेक्ट करने से तुम्हारा 21 जन्म का बन जाता है। और 21 जन्म का जो बनता है उसी हिसाब से 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। बाकी दान करना है, मदद करनी है नहीं करनी है वो तो तुम्हारे ऊपर है, करो या न करो। जैसा करेंगे वैसा पावेंगे। नहीं करेंगे नहीं पावेंगे। बाप बच्चों को कहते हैं कब मांगना नहीं है, नहीं तो अवज्ञा का दंड पड़ जाएगा। क्यों क्यों दंड पड़ जाएगा? मांगने वाला सदगुरु की निंदा कराने वाला बन जाता है। सदगुरु बाप तो आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनाने आए हैं। मांगने वाला आधीन भिखमंगा बनाने के लिए नहीं आए हैं। और फिर कोई मांगने लगे तो ये तो बाप की निंदा कराई। ऐसों के लिए फिर कहते हैं क्या क्या कहावत है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ऐसे मांगने वाले ब्राह्मण जो नई दुनिया फर्स्ट क्लास बननी है, बाप आकर के जो नई दुनिया का डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हैं, 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, उस दुनिया में उनको ठौर नहीं मिल सकता। बाकी वो गुरु तो ऐसे ही कहते रहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अपने को सदगुरु समझते हैं, अपना ही घरघाट ठौर छोड़ करके भागते हैं तो दूसरों को कौन सा ठौर ठिकाना देंगे? ये तो बाप बेहद का सदगुरु बनकर के आया हुआ है। नंबर बार बच्चों को पद देते हैं, तो क्यों भीख मांग करके सदगुरु की पत गंवाते हैं? इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाला शिव बाबा और फिर उसके बच्चे कहलाने वाले भीख मांगे, कितनी निंदा की बात हो गई। बच्चों को कभी नहीं मांगना चाहिए। निंदा कराए करके तुम अपना मर्तबा नीच बनाते हो। जन्म जन्मांतर का मर्तबा कम हो जाता है। इसलिए कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। बाप कायदे कानून तो सभी प्रकार के समझाए देते हैं। फिर हरेक बच्चे को अपने अपने प्रकार की बुद्धि है। ये बुद्धि हजार नियामत है। कैसे? 63 जन्मों में जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार अच्छी या बुरी प्रकार की बुद्धि मिल जाती है। उस बुद्धि के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। इसलिए बोला कि हर एक बच्चे की बुद्धि अपनी अपनी है। बताते हैं कि कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, उनका फल दूसरे जन्म में मिल जाता है। ऐसे नहीं कि ग्लोबल हॉस्पिटल बनाई दिया, तो कोई ग्लोबल हॉस्पिटल बनाने वालों को 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। हाँ, एक जन्म के लिए फल मिलेगा, हॉस्पिटल बनाने वाले भी बल ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, फिर भी ये ईश्वरीय धंधा तो नहीं है क्या, हॉस्पिटल आदि बनाना? तो अगले जन्म में उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। बाकी ऐसे नहीं कि 21 जन्म का मर्तबा मिल जाएगा। या यूं कहें कि हॉस्पिटल बनाने वाले अगले जन्म में बीमार नहीं पड़ेंगे। नहीं तो मनसा वाचा कर्म इंद्रियों से कितने बीमार हो पड़ते हैं। धर्मशाला बनावेंगे तो मकान अच्छा मिल जाएगा, परंतु एक जन्म के लिए। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है? एक जन्म के लिए महलमाणियां अटारियां मिल जाएंगी, बाप फिर कहते हैं कि नई दुनिया में तुमको बाप से 21 जन्म के लिए मिलना है। अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, समझा समझा करके बच्चों को 100% समझदार बनाते हैं, फिर माया रावण 100% बेसमझ बनाई देती है। सभी कहते हैं करेक्टर्स खराब हैं, क्योंकि विकारी है ना। बाप आकर के तुम्हारे करेक्टर्स राम राज्य में दैवी बनाई देते हैं। समझाते हैं कि अगर इस ब्राह्मण जीवन में प्योरिटी नहीं आई तो पीस और प्रॉस्पर्टी में भी कमी पड़ जाएगी। निर्विकारी दुनिया है, सॉल्वेंट दुनिया, सब प्रकार से भरपूर रहेंगे। विकारी दुनिया है, इनसॉल्वेंट, तो सारा मदार पवित्रता पर है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। अभी दुनिया में प्योरिटी नहीं है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। भारत से विदेशों की तुलना कर सकते हो, कहां पीस और प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, विदेशों में या भारत में? क्यों? विदेशों में इतनी शांति और धन संपत्ति का जखीरा क्यों जमा हुआ पड़ा है? भले अल्पकाल का है, लेकिन है तो यहां भारत में तो झगड़ा, अत्याचार, भ्रष्टाचार सभी होते रहते हैं। विकारों के कारण भारत में द्वापर युग के शुरू से लेकर के झगड़े आदि पड़ते चले आ रहे हैं। कितने अत्याचार होते हैं और ये अंत तक चलते रहेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। एक दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है, सात अड़सठ इस षष्ठी चक्र में तीन मतें होती हैं। कौन कौन सी तीन मतें होती हैं? सारी मानवीय षष्ठी के चक्र में, चौरासी के चक्र में तीन मतें खास। कौन कौन? पहली है ईश्वरीय मत, फिर होती है दैवी मत, उसके बाद होती है आसुरी मत, एक है मानव मत। मनुष्यों की मत से दुनिया नीचे उतरती चली जाती है। इसके बाद होती है ईश्वरीय मत। ईश्वर आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं तो दैवीय मत कही जाती है। ईश्वर मनुष्य मत से चेंज करके ईश्वरीय मत से दैवी मत बनाते हैं। सतयुग त्रेता में है दैवी मत। बाप ने समझाया है कि सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग कहेंगे लेकिन दो कलाएं कम हो जाती हैं, इसलिए सैमी स्वर्ग कहेंगे। संपूर्ण स्वर्ग नहीं कहेंगे क्योंकि संपूर्ण आत्मिक स्थिति वहां नहीं रहती, स्व स्थिति नहीं रहती। अभी भी महाविनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे प्रैक्टिस करके जितना स्वस्थिति में स्थित होते जाते हो, उतना अपने को हल्केपन में, सुख में महसूस करते रहेंगे। बल दुनिया में विनाश बरपा होता रहे, तू अभी 16 कला संपूर्ण सुख तू नहीं कहेंगे। इसलिए कहते हैं कि अभी हम बच्चे उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे स्वस्थिति की प्रैक्टिस के अनुसार हमारी आत्मा की कलाओं की बढ़ोतरी होती जाती है। त्रेता के बाद 2 कलाएं कम हो जाती हैं। द्वैतवादी युग द्वापर आता है, फिर कलयुग आ जाते हैं। ज्ञान का वर्षा पूरा हुआ, भक्ति आ जाती है। कहेंगे रावण का वर्षा, रावण का वर्षा है भक्ति, भगवान का वर्षा है ज्ञान। नहीं तो भगवान आकर क्या देते हैं? महलमाणियां, अटारियां, धन संपत्ति देते हैं क्या? ज्ञान ही देते हैं। और रावण क्या देते हैं? है? भक्ति देते हैं। भागते रहो, ठोकरें खाते रहो, बुद्धि को ठिकाना मिलता ही नहीं। उसको कहा जाता है मनुष्य मत। और मनुष्य तो ढेर के ढेर हैं, कितने गुरु हैं जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं। आसुरी मत कहेंगे, क्योंकि 5 विकार सर्वव्यापी हो जाते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना तो भूल है। ईश्वर कहा ही उसे जाता है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासक है। ये गुरु लोग अपने को ईश्वर कहलाते हैं। पांच विकार तो सब में है। तो जब सारी दुनिया में विकार व्यापक हो जाते हैं, तब ईश्वरीय मति मिलती है देवता बनने के लिए। देवताएं पावन होते हैं, बाप आकर पतितों को पावन देवता बनाते हैं। उनकी ईश्वरीय मत सबसे ऊंचे मत है। उसको श्रीमत कहा जाता है। जिस श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाप ने समझाया है, जब कलयुग होता है, रावण राज्य शुरू होता है, तब है आसुरी मत। और भारत की ही बात है, जो भारत ऊंचते ऊंच था वो नीचते नीच बनता है। 84 जन्म भी भारत ही लेती है, लेती है, है? लेती है कि लेता है? लेती है नहीं। भारत माता नहीं कहा जाता है? फिर जब माता है तो 84 जन्म लेती है या लेता है? जैसे माया रावण कहते हैं, तो स्त्री है या पुरुष है या दोनों है? मैक्सिमम है 84 जन, मिनिमम है 1 जन, बाकी 84 लाख जन्म नहीं है। 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्यों का जन्म नहीं होता है। सतयुग है, श्रेष्ठ युग है। तो वहां थोड़ी योनियां होती है। कलयुग है, भ्रष्ट से भ्रष्ट युग, तो वहां दुखदाई कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो 84 लाख योनियां सतयुग में कहें या कलयुग में कहें, कलयुग में होती हैं 84 लाख योनियां, बाकी मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है। हां, ये कह सकते हैं कि मनुष्य जानवरों से भी बदतर कर्म करने लग पड़ते हैं। सूरत मनुष्यों की होती है और सीरत जानवर मिसल बन जाती है, कीड़े मकोड़ों मिसल बन जाते हैं, बाकी 84 लाख जन्म नहीं लेते हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। इस कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, तो 84 लाख योनियों के अनुसार व्यवहार करने वाले मनुष्य होंगे या नहीं होंगे? मनुष्यों की चलन जानवरों कीड़े मकोड़ों मिसल बन पड़ती है। सतयुग में तो थोड़े देवी देवताएं होते हैं। इस तरफ है अथाह अनेकानेक धर्म, तुमको त्रिमूर्ति का चित्र भी दिखाते हैं, बताते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सिर्फ ब्रह्मा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अगर ब्रह्मा कहे, सिर्फ ब्रह्मा कहे, तो संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता बनते हैं क्या? '69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, कोई भी ब्राह्मण को संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। उसमें भी दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। कौन कौन से? पुख वंशावली माने गोद से प्यार करने वाले, जिन्होंने गोद का सुख लिया है, उन ब्राह्मणों को ब्रह्मा की गोद ही याद आती रहती है। वो है कुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं। ईश्वरीय वाणी की कदर नहीं करते हैं। ईश्वरीय वाणी को इतना नकार देते हैं कि बीसियों वर्ष की वाणी नेस्त नाबूद हो जाती है। नहीं तो ईश्वरीय वर्षंस को रखना चाहिए बड़े ऐतिहास से। क्योंकि ईश्वर की वाणी ही सत्य है, उस सत्य वाणी से ही सत्ययुग की स्थापना होती है, दुनिया में सत्य का बोलबाला होता है। तो ब्रह्मा द्वारा कहेंगे सामान्य रूप से ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, कोई नई दुनिया की स्थापना स्वर्ग की स्थापना नहीं हो जाती। इसलिए फिर कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तुम ब्राह्मण मुखवंशावली नहीं हो, मुखवंशावली हो, क्योंकि तुमने ईश्वर की वाणी को जो ब्रह्मा के मुख से ही नहीं निकलती, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भी निकलती है, उस वाणी को तुमने पहचाना है, तुम फॉलो करते हो, इसलिए तुम मुख वंशावली हो। तो पहले पहले है बाप, फिर तुम ब्राह्मण, और तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, वे ब्राह्मण देवता नहीं बनते हैं। क्या अंतर है? तुम ब्राह्मण देवता बनते हो, वे नहीं बनते हैं। तुम माने जो सन्मुख बैठकर बाप के सुनते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं और सारी दुनिया को धारण कराते हैं। ये भी बच्चों को बाप ने समझाया है कि राम को तीर क्यों देते हैं, इस समय तुम सब हो रूहानी क्षत्रिय, तुमको तीर मुले हुए हैं, पूर्व जन्म की प्रारब्ध से। जैसे राम फेल हुआ, राम के पीछे पीछे तुम बच्चे भी फेल हुए। तो बाप से बच्चों को ऑटोमेटिक तीखे तीखे बाण मिले हुए हैं, ज्ञान के बाण। बाप आकर के गुप्त रीत से तुमको बाण देते हैं, गुप्त बाप आता है, इन आंखों से बाप देखने में नहीं आता है। तो कोई को कहें कि चलो तुमको रूहानी बाप दिखलाए आए, नहीं, कौन सी आंख से देखने में आता है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने में आता है। आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है। और ये भी जानते हो कि समझ आत्मा में ही होती है, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में होते हैं, पतित भी आत्मा बनती है और पावन भी आत्मा बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित बनता है। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया मेरे हर साल चल रही है। याद की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आत्म की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो आत्मा पतित बनती है या पावन बनती है? पतित बनती है। और जब आत्मा पतित बनती है तो संस्कार भी पतित हो जाते हैं, शरीर भी पतित हो जाता है। जो शरीर की असली ऊर्जा है, ऊर्जा, क्या नाम दिया उसका, ऊ माने ऊपर और जा माने जाने वाली, जो आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती है, जब पतित बनते हैं तो वो ऊर्जा जमीन में मिलाए देते हैं, नाली में चली जाती है। तो बोला आत्मा पतित तो शरीर भी पतित बन जाते हैं, आत्मा पावन तो शरीर भी पावन बनते हैं। आत्मा में खाद है तो जेवर भी खाद का बनता है। ये बातें बाप ही बैठ बताते हैं, दूसरा कोई इन बातों की गहराई को नहीं बतावेगा। जो बताते हैं ऋषि मुनि सभी कहते थे कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि की तो बात छोड़ो, उनके तो मंदिर भी नहीं बनाए जाते, मूर्तियों की पूजा भी नहीं होती है। जिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी बनाए जाते हैं, पूजा भी होती है, और दुनिया में और शास्त्रों में कहीं भी उनकी कोई ग्लानी नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते थे रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को। तो वो ईश्वर का ज्ञान परंपरा नहीं चल सकता। ये आत्मा ही श्रेष्ठ और नीच बनती है, सभी कुछ आत्मा ही बनती है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, हा? अभी आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, शूटिंग होती है क्या, हो रही है? नहीं, वहां तो 63 जन्म और सतयुग त्रेता के 21 जन्म शरीर छोड़ते हैं और लेते हैं, यहां शूटिंग कैसे होती है? यहां भी शूटिंग हो रही है, और ये शूटिंग का, रिहर्सल का, रिकॉर्डिंग का हिसाब बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में न कोई गुरु न कोई ब्राह्मण समझा सकता है। कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल साकार को कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।